क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
क्षितिज कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मैं हूं डॉक्टर देवभरत सीरतन। क्षितिज कार्यक्रम के बारे में दो शब्द। क्षितिज कार्यक्रम MBC के मिले जिले सहयोग से विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। ये कार्यक्रम पाक्षिक आधार पर सोमवार को प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत हिंदी से जुड़ी विश्व की गतिविधियों, हिंदी के प्रचार प्रसार में विभिन्न देशों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं, हिंदी के उत्थान में कार्यरत विद्वानों, लेखकों व शिक्षकों के योगदान, हिंदी साहित्य और हिंदी अनुवाद के माध्यम से हिंदी को बढ़ावा देने और वैश्विक हिंदी तथा भारतीय संस्कृति पर बातचीत की जाएगी। इन विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए हिंदी के विद्वानों का साक्षात्कार किया जाएगा। हर कार्यक्रम में उपर्युक्त चर्चित क्षेत्रों से किसी एक विषय को चुना जाएगा, जिस पर विस्तार देने का प्रयास किया जाएगा। प्रिय श्रोताओं, मैं बता दूं कि आज के कार्यक्रम का शीर्षक है विश्व स्तर पर हिंदी। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे मध्य में विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी हैं। आप हिंदी के महान विशेषज्ञ विद्वान हैं और पिछले कुछ सालों से आप मॉरिशस स्थित विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव पद पर कार्यरत हैं। प्रोफेसर मिश्रा जी नमस्कार। आप मॉरिशस के हिंदी जगत में जाने माने विद्वान हैं। MBC के स्टूडियो में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रोफेसर मिश्रा जी, विषय की गहराई में जाने से पहले एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। प्रोफेसर साहब, आज पूरे विश्व में वैश्वीकरण शब्द की चर्चा की जा रही है। आप कृपया हमारे श्रोताओं को समझा दें कि वैश्वीकरण क्या चीज़ है।
धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं MBC के प्रति कृतज्ञ सचिवालय की ओर से, क्योंकि सचिवालय के साथ MBC का हाथ मिला और एक नए कार्यक्रम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसको हमने देखा कि नए क्षितिज की ओर, हिंदी नए क्षितिज की ओर बढ़ रही है। और आपने पूछा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण कोई नया शब्द नहीं है, और अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो बहुत लंबी चर्चा इस पर होगी। केवल हम अगर ये देखें कि बदली हुई परिस्थिति में विश्व स्तर पर जो बाजारवाद की संकल्पना है, बाजार से उपजा हुआ शब्द, अन्यथा भारत जैसे देश में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा बहुत पहले से रही है
जी,
अगर उसी का हम बाजारीकरण कर दें तो वो मंडलीकरण हो जाता है। विश्वग्राम की अवधारणा पहले से रही है, लेकिन वहाँ व्यापार रहा है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो वहाँ व्यापार नहीं, वहाँ प्यार है, और प्यार व्यापार में आप जानते हैं कि 36 का आंकड़ा होता है। जब हम हिंदी को लेकर बात करते हैं कि हिंदी की वैश्विकता पर, तो हिंदी का अपना एक व्यापक क्षेत्र है। कहाँ से शुरू करें? भारत में उपजी हिंदी। और एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, भाषा के मामले में और संस्कृति के मामले में, भाषा और संस्कृति को किसी भौगोलिक क्षेत्र में आप बांध कर नहीं देख सकते। भाषा का भाषिक भूगोल हो सकता है, इसमें कोई दोरा नहीं, लेकिन अगर भाषा को आप विस्तार देना चाहते हैं तो उसे भूगोल से बाहर निकालना होगा। और जब तक भाषा को भूगोल से बाहर नहीं निकालते हैं, जैसे भारत किसी भूखंड का नाम हो सकता है, लेकिन भारतीयता की अपनी एक वैश्विक पहचान है। जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ भी मुझे भारतीयता के दर्शन हो जाते हैं। तो ये भारत के बाहर की भारतीयता है, लेकिन जिसकी जड़ें कहीं ना कहीं भारत के उसी भूभाग से हैं जहाँ से भारतीय संस्कृति का विस्तार होता है।
मनोरंजन के क्षेत्र में फिल्मों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है
जी। अगर मैं ये कहूँ कि हिंदी के विकास में मनोरंजन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जहाँ मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बताऊँ कि इस देश में मैं जब स्वयं गाड़ी चलाता हूँ तो 24 घंटे FM पर क्या बजता है? या तो हिंदी के समाचार होंगे, हिंदी के गीत होंगे, मनोरंजन, तो मनोरंजन से भरपूर चीज़ें हमें रोज़ सुनने देखने को मिलती हैं। अब दुनिया के किसी कोने में जाइए, जब भारत की बात कीजिए तो पुरानी पीढ़ी है तो शुरू करेगी कि दिलीप कुमार और हेमा मालिनी का नाम लेता है व्यक्ति, नई पीढ़ी है शाहरुख खान का नाम लेता है
जी।
हमारा नाम वो नहीं जानता है एक हिंदी शिक्षक के रूप में, लेकिन वो हिंदी फिल्मों से जुड़े हुए लोगों को, गीत गाने वाले जो गीत गाते हैं फिल्मों में उनको जानता है, वो एक्टर्स को जानता है, अभिनेताओं को जानता है, अभिनेत्रियों को जानता है, और उसके जरिए वो हिंदी तक उसकी पहुंच बनती है। अब आप कल्पना कीजिए कि जिसे हिंदी एकदम नहीं आती है वो भी हिंदी का गाना गुनगुनाता है, यहाँ मैंने सुना है वो हिंदी का गाना उसी सुर ताल लय में गाता है लेकिन उसे हिंदी नहीं आती है। ये है हिंदी की पहुंच, ये है हिंदी की पकड़। तो मनोरंजन की दुनिया से निकलकर हिंदी लोगों के घरों तक पहुंच गई है, लोग सीरियल देखते हैं। तमाम ऐसी महिलाओं से मैं मिला, बड़े लोगों की जो हिंदी तो बोलते हैं और कहते हैं कि उनसे अच्छी उनकी पत्नियां हिंदी बोलती थी, उन्हें कहाँ से सीखा आपने? उन्होंने कहा कि बस सीरियल देख करके।
जी हाँ,
तो ये मनोरंजन है, सीरियल से फिल्मों से लोगों ने हिंदी सीखी। तो हिंदी को बढ़ाने में वैश्विक स्तर पर हिंदी सिनेमा, हिंदी के फिल्मी गीत, आजकल जो धारावाहिक आ रहे हैं वो, इतना ही नहीं छोटे छोटे बच्चों में हिंदी का विस्तार हो रहा है। अगर वो कार्टून फिल्में देखते हैं हिंदी माध्यम से, उनकी शब्द संपदा बढ़ जाती है, बच्चे शुद्ध हिंदी में बात करने लगते हैं जो कार्टून देखते हैं और कार्टून के डायलेक्ट से अपना संप्रेषण करते हैं एक दूसरे से।
ये तो बात हो गई हिंदी भाषी लोगों की बातें, मगर ऐसे कुछ लोग भी हैं जो हिंदी उसको आती नहीं है, हिंदी समझता नहीं है, मगर हिंदी के शब्द का वो प्रयोग करता
जी। ये सब वही विरासत में चीज़ें मिली हैं। वो फिल्म देखता है, उसे कोई डायलॉग अच्छा लगता है, वो आके बोल देता है मोगाम्बो खुश हुआ। वो नहीं जानता है कि मोगाम्बो क्या है, खुश कैसे हुआ जाता है,
बिल्कुल,
लेकिन वो बोल देता है मोगाम्बो खुश हुआ। कितने आदमी थे, वो बोल देता है कितने आदमी थे। ये सब फिल्मों के डायलॉग हैं जो लोगों के जहन में हैं, या जो कहते हैं ना मोगाम्बो खुश हुआ
जी,
भाई मोगाम्बो कौन है, कैसे खुश हुआ, ये चीज़ें उसे हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करती हैं और अचानक उसके जहन में हिंदी चली जाती है और स्थायी भाव के रूप में हिंदी उसके भीतर समा जाती है।
तो इस प्रकार से कहें कि जहाँ जहाँ हिंदी की फिल्में जाती है और हिंदी के जो सीरियल्स जाते हैं
जी,
उनके माध्यम से हिंदी का विस्तार
हिंदी का विस्तार हो रहा है। ये हिंदी का जो मनोरंजन पक्ष है, मनोरंजन के जरिए हिंदी का विस्तार हो रहा है। शिक्षण तो है ही, शिक्षण एक खास वर्ग विशेष में शिक्षण का विस्तार है, लेकिन आम जनता में जिसे बूढ़े लोगों के बीच में
जी,
हिंदी शिक्षण के रूप में नहीं जा सकती, व्यवहार के रूप में जा सकती है। और वो व्यवहार चाहे वो सिनेमा से हो, सीरियल से हो, बातचीत से हो, रेडियो से हो।
तो आज हम ये भी देखते हैं कि पूरे विश्व में हिंदी भाषी हो या नहीं, हिंदी के कोर्स दिए जाते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में हिंदी पढ़ाई जाती है।
जी जी, अब आप सोचें कि विश्व के लगभग 129-130 देशों में हिंदी का विस्तार है, न जाने कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। एक भारतीयतर देशों में, और भारत को छोड़कर अगर हम दो किन्हीं हिंदी देशों की बात करें, मैं देश कोट अनकोट कह रहा हूँ, तो उसमें दो देश हमारे सामने उभरते हैं। एक है मॉरिशस, जिसे हम हिंदी का एक विस्तार मानते हैं कि हिंदी देश का ही एक विस्तार है। दूसरा है फिजी, जहाँ की राजकाज की भाषा हिंदी है, वहाँ एक हिंदी एक भाषा राज्य की भाषा के रूप में हिंदी है। अभी आपने सुना होगा कि आबू धाबी ने तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी,
आधिकारिक भाषा
कानून की भाषा। ये एक बड़ी घटना है हिंदी को लेकर के, और इससे बड़ा हिंदी के वैश्विक होने का क्या प्रमाण आपको चाहिए कि हिंदी स्वतः वैश्विक हो रही है। आबू धाबी में कोई हिंदी भाषी या वहाँ की सरकार की कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन ये समय की मजबूरी है। जिस तरह से कामगार वहाँ गए हुए हैं और कानूनी अड़चने आती हैं, उनकी मुकदमे को सुलझाने के लिए हिंदी को एक कानूनी भाषा का दर्जा दे दिया कि चलो, जो एक आश्चर्य की बात है, भारत में भी अगर कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में अधिकृत रूप से अभी भी अंग्रेजी में फैसले होते हैं
जी,
अभी वहाँ हिंदी में फैसले नहीं होते हैं। उससे भी बड़ा आश्चर्य है कि कहा जाता है कि अगर कोई विवाद उत्पन्न होगा तो अंग्रेजी वर्जन ही मान्य होगा। अब आप सोचिए, एक आबू धाबी, उसने कहा कि नहीं, तीसरी भाषा भारत को सीखने की जरूरत,
आधिकारिक रूप में,
हाँ भारत को सीखने की जरूरत है कि कानून की भाषा उस देश में हिंदी हो सकती है। और तो अंग्रेजी का डर दिखा करके अब किसी भाषा को दबा नहीं सकते हैं, किसी भाषा का कोई डर नहीं, वो सारी भाषाएं सहधर्मिणी हैं, साथ चलने वाली भाषाएं हैं, साथ चलते चलते भाषाएं विकसित होती हैं। इस देश से बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आपको चार चार पाँच पाँच भाषाएं कैसे आ गई, आपके पूर्वज भोजपुरी लेकर आए थे, फिर हिंदी आपको यहाँ मिली विरासत में, फिर यहाँ की एक स्थानीय भाषा विकसित हुई, उसके साथ अंग्रेजी और फ्रेंच आधिकारिक भाषा के रूप में यहाँ मिली, तो यहाँ चार चार भाषाओं के जानकार लोग ऐसे ही हो गए।
क्योंकि रोज बोलते हैं, कितनी बार उसको सुनते हैं, उसको बोलते हैं, उसका प्रयोग में लाते हैं।
भाषा की पहली शर्त है कि भाषा जो ओढ़ेगा बिछाएगा उसी के साथ रहेगी। इसलिए नहीं कि मैं हिंदी भाषी हूँ इसलिए भाषा मेरी बपौती है, नहीं, भाषा उसके साथ जाती है जो ओढ़ता बिछाता है। ओढ़नी बिछाने व्यवहार करने से भाषा बढ़ती है। अभ्यास अनभ्यासम विषम शास्त्रम, अभ्यास अगर नहीं है तो शास्त्र भी विष हो जाता है, तो भाषा भी अभ्यास से आगे बढ़ती है, व्यवहार से आगे बढ़ती है।
तो हम देखते हैं कि इग्नू की ओर से भी कोर्स दिए जाते हैं।
जी, भारत में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दूरवर्ती शिक्षा प्रदान करने के लिए, जिनके पास कोई माने
सुविधा नहीं है
वो चाहें तो पत्राचार के जरिए दूरस्थ शिक्षा माध्यम से जुड़ करके ढेर सारे पाठ्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं, और उसमें भी हिंदी एक विषय के रूप में दूरवर्ती पाठ्यक्रम में हिंदी पढ़ाया जाता है। और केवल इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में दूरवर्ती पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, दूरस्थ पाठ्यक्रम डिस्टेंस एजुकेशन में।
इस समय की मांग है क्योंकि लोग पढ़ते हुए नौकरी करते हैं।
बिल्कुल, और रोजगार से हम भाषा को तभी जोड़ सकते हैं जब वो समय की मांग को पूरा करे, बाजार की जरूरतों को जो भाषा पूरी करेगी वही भाषा जिंदा रहेगी।
प्रोफेसर साहब, पिछले साल अगस्त महीने में विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो एक हर तरह से सफल कार्य रहा। सम्मेलन में कई लोगों ने, कई वक्ताओं ने हिंदी को लेकर बताया कि हिंदी राष्ट्रसंघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है।
पहले तो स्पष्ट कर दूं कि विश्व हिंदी सचिवालय उसमें एक भागीदार था, लेकिन ये कार्यक्रम भारत और मॉरिस सरकारों का कार्यक्रम था, विश्व हिंदी सम्मेलन। और जैसा अमूमन हर बार चर्चा होती है कि हिंदी का अंतिम पड़ाव क्या है, तो हिंदी का अंतिम पड़ाव संयुक्त राष्ट्र संघ है, सबकी मांग है, आज नहीं कल वो पहुँचेगी ही। कुछ तकनीकी बाध्यताएं हैं, जैसे ही वो बाध्यताएं पूरी हो जाती हैं हमें पूरा विश्वास है कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुँचेगी ही, क्योंकि अब जन समर्थन की जरूरत नहीं है। कुछ तकनीकी बाधाएं हैं जिन्हें भारत सरकार अपने स्तर पर दूर करने का प्रयास कर रही है, और आज नहीं कल यूएन की भाषा बनेगी। लेकिन क्या यूएन की भाषा बनने के बाद हिंदी का इति नहीं, वहीं से हिंदी का अर्थ शुरू होगा,
पुनर्जन्म
अर्थ शुरू होगा, फिर अर्थ से उसकी अर्थवत्ता बढ़ेगी, और जब अर्थवत्ता बढ़ेगी तभी हम सोच सकते हैं कि हिंदी के क्षितिज को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, जो हमारी कल्पना है, हमारी संकल्पना है। अर्थ से तब फिर इति की यात्रा होती है, इति से अर्थ नहीं, वहीं हिंदी का नए रूप में पुनर्जन्म होगा, और वहां से फिर एक हिंदी नया विस्तार लेगी, फिर नए क्षितिज की तलाश करेगी और अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचेगी।
प्रोफेसर मिश्रा जी, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हमारे श्रोताओं को नई नई जानकारियां दे रहे हैं, जी तो करता है कि बस आपको सुनते जाएं, मगर समय की मांग ये भी है कि समय बहुत कम है। प्रिय श्रोताओं, आज का विषय समाप्त होने जा रहा है। आज हमने क्षितिज कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व स्तर पर हिंदी पर विचार विमर्श हुआ, हमने प्रोफेसर साहब से उसकी बात हुई, तो हम प्रोफेसर साहब जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। अगली बार क्षितिज कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक अन्य विद्वान को आमंत्रित करेंगे, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए नमस्कार।
मेरी ओर से भी
क्षितिज क्षितिज सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।